हरे कृष्णा। तो आज के इस 22 जनवरी 2013 के मंगलवार के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोग समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए। तो आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन में भक्त लोग व्रत करते हैं, भगवान का ध्यान ज़्यादा करते हैं। भगवान का ध्यान ज़्यादा हो सके इसलिए उपवास रखते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, इंद्रिय भोग कम कर देते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि इंद्रिय भोग करने से भगवान के ऊपर का ध्यान हट जाता है। और जब हम एकादशी को उपवास करते हैं तो फिर अपना मन जो है उसको इंद्रिय भोग से दूर रखते हुए भगवान के ऊपर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए वो खिड़की बंद करो उधर से। आत्मा को पोषण देने के लिए भगवान के नाम का जप करते हैं ज़्यादा, मतलब रोज से अधिक। जो लोग रोज जप नहीं करते हैं उनको कम से कम एकादशी के दिन जप करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान के नाम का जप अधिक करने से और एकादशी के दिन भगवान के लिए व्रत करने से भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। आपको पता होगा शायद कि राधा रानी को जब सब गोपियों ने पूछा कि तुम पर भगवान इतना प्रेम क्यों करते हैं, हम सबसे ज़्यादा तुम पर प्रेम करते हैं, तो गोपियों को राधा रानी ने विस्तार में समझाया कि मैं एकादशी का व्रत करती हूँ। इसका वर्णन आपको गर्ग संहिता और ब्रह्म विवर्त पुराण में मिलेगा। राधा रानी विस्तार रूप में गोपियों को सभी एकादशी का नाम लेकर, 26 एकादशियों का नाम लेकर उसका वर्णन करती हैं और बताती है कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान को हम प्रिय हो जाते हैं। और ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि ये एक व्रत करने से फिर भक्त को किसी और व्रत करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना सोमवार का शंकर का व्रत, ना मंगलवार का गणपति का व्रत, ना बुधवार का, ना गुरुवार का, ना शुक्रवार का देवी का व्रत, कोई भी व्रत करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक व्रत करने से सभी व्रतों का जो लाभ है वो उस एक लाभ व्रत करने में मिलता है। और सभी प्रकार के जो व्रत हैं उनका सारा लाभ जो होता है वो भौतिक होता है। सोमवार का व्रत करने से अच्छी पत्नी या अच्छा पति, अच्छी पत्नी शायद, और शुक्रवार का व्रत करने से अच्छा पति मिल जाता है, और रविवार का व्रत करने से अच्छा हेल्थ मिल जाता है, ऐसा सब लिखा है शास्त्र में। ये सब टेम्पररी बेनिफिट है, मतलब कुछ समय टिकने वाला लाभ है। आज अगर आरोग्य लाभ हुआ तो कल वो खराब हो सकता है, आज धन लाभ हो गया तो कल गरीब हो सकता है, आज पति मिल गया तो कल झगड़ा उसके साथ में हो सकता है, तो कोई परमानेंट आनंद नहीं है उसके अंदर। लेकिन एकादशी का व्रत करने से भगवान का ही अनुग्रह प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का जो लाभ है वो दिव्य लाभ है, मतलब कोई भौतिक लाभ नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा या आपको अच्छा पति मिलेगा या अच्छी पत्नी मिलेगी या धन मिलेगा, ऐसा एकादशी का लाभ नहीं है। एकादशी का लाभ साक्षात सबका उगम जो भगवान है उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि एकादशी के दिन से ज़्यादा जप करना चाहिए। और आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? हरे कृष्णा। यहाँ पर नॉलेज देने का हमारा काम है, हाँ, सत्य क्या है असत्य क्या है, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं तो आप फिर वो करते रहेंगे गलतियाँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी भी अन्न खाता है, चावल दाल वाला धान्य खाता है, तो वो गौ मांस खाने के बराबर है। आपको पता नहीं था नहीं, हाँ, क्योंकि एकादशी के दिन एक राक्षस का भगवान पीछा कर रहे थे, तो राक्षस जादू से धान्य के खेत में जाके अदृश्य हो गया, सब धान्य में वो मिल गया उस दिन। इसलिए भक्त लोग एकादशी के दिन धान्य नहीं खाते, क्योंकि जो मूर्तिमंत पाप जो है वो धान्य में जाके एकादशी में रहता है, इसलिए भक्त लोग एकादशी में धान्य नहीं खाते। हमको लगता होगा हम शाकाहारी हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, हम तो बड़े वैष्णव हैं, लेकिन वैष्णव का मतलब है एकादशी व्रत। वैष्णव अगर एकादशी व्रत नहीं करता है तो वो वैष्णव ही नहीं है, वो भगवान का भक्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना सारा नियम पालन करने के बाद में अगर एकादशी को धान्य खाएंगे तो गोमांस या अन्य कोई मांस खाने का नुकसान प्राप्त होता है, इसलिए भक्त लोग एकादशी में धान्य नहीं खाते। और जो भी खाते हैं, फलाहार करते हैं, वो भगवान को अर्पण करके कम से कम खाते हैं, मतलब शरीर को केवल चलाने के लिए। ऐसा नहीं कि एकादशी के दिन हम लोग धान्य नहीं खाते हैं, फिर कुटे को आटे का लड्डू खाते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं, हाँ, क्योंकि वो दूध का बना हुआ है, फ्रूट सलाद खाते हैं, हाँ, ऐसा अलग अलग अगर व्यंजन खाएंगे तो एकादशी का जो उद्देश्य है वही उधर फेल हो जाता है। एकादशी का उद्देश्य क्या है? अपने इंद्रियों पर काबू पाने के लिए हम लोग व्रत रखते हैं, अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए, इंद्रियों को शुद्ध करके नियंत्रण में रख के भगवान की सेवा में लगाने के लिए, उसमें प्रगति करने के लिए हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। तो ये हर बार हमको याद करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अरे हम तो 25 साल से एकादशी कर रहे हैं लेकिन अभी भूल गए कि उसको लोग किस लिए कर रहे हैं, उसका उद्देश्य मन से हट गया पूरा, ऐसा आपको लगेगा। बार बार वो बातें दोहरानी चाहिए, उसको कहते हैं रिविजन, बोलते रिविजन, उजड़नी याद करना चाहिए, क्यों करते हैं हम लोग इसको। और अगर आपको भौतिक लाभ भी चाहिए ना तो भी एकादशी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो सभी देवताओं के स्वामी हैं। वो सोमवार का व्रत जिसके लिए करते हैं शंकर जी, उनके भी स्वामी हैं वो। मंगलवार का जिनके लिए करते हैं गणपति जी, उनके पिताजी के स्वामी हैं वो। हाँ, शुक्रवार का देवी का व्रत करते हैं, देवी भी उनका ही पूजन करती है। चंद्र, सूर्य, वरुण देव, वायुदेव, जितनी भी देवता हैं, इंद्र, ब्रह्मा, सब देवता जो है 33 करोड़, जिनका अलग अलग लोग अलग अलग व्रत करते हैं, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग हेतुओं को मन में रखते हुए व्रत करते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत जो है वो कृष्ण के लिए है, सभी देवताओं के जो स्वामी हैं उनको प्रसन्न करने के लिए किया हुआ व्रत है। ये बुद्धिमानी की बात है। हाँ, अभी आप लोग अगर 2-4 मिनिस्टर लोगों को मस्का लगाएंगे, उनका जरा खुश मस्करी करेंगे, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको कोई बताएगा कि ये सबका एक बॉस है, चीफ मिनिस्टर, उसको आप अपना मर्जी में लेंगे ना तो इन अलग आदमी को पटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप लाइक, नहीं नहीं, हमारा तो इन पर ही श्रद्धा है, हम लोग इन पर ही दिल लगा के बैठेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि तो आप वो मंत्री जो है उसके पास भी कुछ लाभ के लिए उसको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मन में आपके हेतु है, उसका आपका मंत्री पर प्रेम नहीं है, मंत्री जो दे रहा है उसके ऊपर आपका प्रेम है। ऐसे तरह से ये सबके जो स्वामी हैं उनको अगर प्रसन्न करेंगे तो हरेक को अलग अलग से व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये मंत्रीगण जो है उनका स्वामी जो है उसमें अलग अंतर है थोड़ा सा। ये मंत्रीगण जो है जितना पावर है उतने दे सकते हैं, जितना उनको अथॉरिटी दिया है उतने दे सकते हैं, लेकिन ये जो स्वामी उनके हैं इनके पास पूरी अथॉरिटी है सब कुछ। अगर जल वाले मिनिस्टर को आप बोलेंगे जल दे दो तो जल दे देगा, लेकिन जल वाले मंत्री को बोलेंगे बिजली दे दो तो नहीं दे सकता है, बोलते बिजली वाले के पास जाओ, लेकिन बॉस के पास जाएंगे तो बिजली भी मिलेगा, जल भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है, हर चीज़ मिल सकती है। वैसे है ये कृष्ण भगवान का मामला। कृष्ण भगवान जो है सभी देवताओं को अनंत शक्तियाँ देकर रखा है उन्होंने, लेकिन उसके शक्ति के बाहर वो लोग जाते नहीं, जा सकते नहीं है। जो उनके पास दिया है उतना ही दे सकते हो, उसके आगे नहीं दे सकते। अगर आप देवी को बोलेंगे कि जो शंकर जी का लाभ है वो हमको आप दे दो तो नहीं दे सकते हो। गणपत जी के पास जाएंगे और किसी और का लाभ मांगेंगे तो बोलते हैं उनके पास जाओ, हमारे पास उसका अथॉरिटी नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी की बात क्या है कि ये सब लोगों के पास हर सोमवार, हर मंगलवार, हर बुधवार का अलग अलग व्रत करने के बदले में एक ही व्रत करो जो सबके लिए संतुष्टि करने वाला है। क्योंकि भगवान जो है वो पेड़ की जड़ है, उसको आप जल देंगे ना तो अलग से शाखाओं में, अलग से पत्तों में, अलग से फूलों में, फलों में जल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार जड़ में जल दिया तो सबको जल पहुंच जाता है। उसी तरह से एक बार भगवान के लिए व्रत किया, भगवान का नाम लिया, भगवान को प्रसन्न किया तो सारे देवता क्यों ना हो, सारे देवता ही नहीं सारे जीव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमको जो भी करना है बुद्धिमानी से करना है, ऐसे ही बहकाव में आके नहीं करना है कि हमारे पड़ोसी ने बताया था उसको लड़का हो गया, मुझे भी लड़का चाहिए, चलो वही व्रत करूंगा मैं। ये सब स्वार्थी की बात है और हर जगह ऐसा नहीं होता है। एक जगह एक व्यक्ति को उस करने से लड़का हो गया तो अगले व्यक्ति को होगा, ऐसा गारंटी नहीं होता है, हमने देखा हुआ है। जाते हैं लड़का का व्रत करने के लिए, होती है लड़की, और किसी को लड़की चाहिए तो वो व्रत करती है तो उसको लड़का हो जाता है, क्योंकि वो जानते नहीं है कि ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, भगवान के हाथ में, सबके स्वामी है वो। इसलिए हम लोगों को उनका व्रत करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं एकादशी का व्रत करता हूँ इसलिए आपको एकादशी का व्रत करने को बोल रहा हूँ। मैंने क्यों किया एकादशी का व्रत चालू, वो कारण आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने जिस कारण से शुरू किया ये समझते हुए कि वो जो व्रत है एकादशी का वो परम भगवान के लिए है। परम भगवान की कृपा जब हो जाती है तो अन्य किसी की कृपा प्राप्त करने की या सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको, कभी भी नहीं पड़ती है। इसलिए आप लोग अगर नहीं कर रहे हो आप करो, क्योंकि यही जीवन है, और कोई जीवन की वेट मत करो आप। ये नहीं कि अगले जीवन में फिर एकादशी करेंगे, फिर उसके अगले जीवन में जप करेंगे, फिर उसके अगले जीवन में धाम में जाएंगे यात्रा करने के लिए। एक एक जीवन के लिए प्रोग्राम बना के रखा है। हाँ, पंच जीवनी योजना होता है ना, पंचवार्षिक योजना, वैसे हमारी ऐसी कोई योजना बनाना नहीं चाहिए आपको। जो भी जीवन है यही है बस, इसके आगे जीवन नहीं है। आगे पर पता नहीं कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, शेर बनेंगे, या तो कीटक बनेंगे, या तो मस्किटो बनेंगे, मच्छर बनेंगे, नोबडी नोस। इसलिए जो करना है मनुष्य जीवन में, जो कर्तव्य मनुष्य जीवन का है वो इसी जीवन में करना है, क्योंकि यही एक जीवन हमारे हाथ में है। आगे का जीवन हमारा हाथ में होगा नहीं होगा नो गारंटी। और इस जीवन में अगर आपको लाभ मिल रहा है, मतलब ज्ञान मिल रहा है, उपदेश सुनने को मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है तो तुरंत ले लो, कुछ पता चल रहा है तुरंत स्वीकार करो उसको। और आप काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम करते होते तो वहाँ पर बोलेंगे हमारा एकादशी है, तो कैंटीन में आपको एकादशी का खाना नहीं मिलेगा, घर से लाना पड़ेगा आपको, या तो फल खाना पड़ेगा। लेकिन भक्ति वेदांत में आप काम कर रहे हो तो आपको एकादशी का प्रसाद भी मिल रहा है। मरीज होके भर्ती भी हो गए ना और बोलेंगे हमारा तो व्रत है आज, तो व्रत का प्रसाद मिलेगा आपको। इतनी सुविधा तो बना के रखी है आपको ड्यूटी पर भी, केवल आपको करना है, बस सोच के करना है कि आपको करना है, क्योंकि ये व्रत जो भी करता है वो साक्षात भगवान को प्रसन्न करता है। तो इसलिए हम आपको छोटी सी एक कहानी बताना चाहेंगे, भगवान की कथा है, भगवान के विषय में है, हमारे लिए बोध देने वाली कथा है, शिक्षा देने वाली कथा है, इसलिए बताएंगे। वो हमारा उस दिन उत्सव था कुछ दिन पहले, उसमें हमने एक नाटिका दिखाई, वो नाटिका दिखाई उसका नाम था गोपाल चपल का पश्चाताप। हाँ, कुछ लोगों ने देखी होगी, आपने देखा ना कुछ लोगों ने, लेकिन वो कथा जो है वो इतनी सुंदर कथा है, हम सबके लिए बोधजनक कथा है। अभी हम लोग मायापुर जा रहे हैं, अपने से कितने लोग मायापुर आ रहे हैं, हरे कृष्ण, पर बहुत कम लोग आ रहे हैं, बहुत कम लोग। हाँ, और भी नहीं, इसमें से बहुत कम है ना, लेकिन इसमें से भी सब लोगों को हमने आमंत्रण दिया है, बहुत सस्ते में सब लोगों को आमंत्रण दिया है। नहीं नहीं नहीं, इस ग्रुप में जितने बैठे हैं इनको भी सबको आमंत्रण दिया। हाँ, 16 फरवरी से 19 फरवरी तक मायापुर धाम जो है ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान होने के कारण वो जगह भी चैतन्य महाप्रभु की तरह है। और चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, चैतन्य महाप्रभु वही भगवान कृष्ण है लेकिन वो अलग भाव में आते हैं। कृष्ण भगवान जो है वो जब आते हैं वो कहते हैं कि सर्वधर्मम परित्याज्य मामेकम शरणम व्रजामि, सब धर्मों को त्याग दो मेरी शरण में आ जाओ तब मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, उनको मोक्ष दिला दूंगा। लेकिन महाप्रभु चैतन्य के रूप में जब आते हैं तो ऐसा नहीं बोलते हो, बोलते अब जैसे भी हो कैसे भी हो, केवल मेरा नाम लेंगे आप तो मैं सभी पापों से तो मुक्त कर दूंगा, आपको मोक्ष तो दे ही दूंगा, लेकिन उसके साथ में प्रेम भी दूंगा, भक्ति भी दूंगा। एक साथ कृष्ण भगवान भी अपना प्रेम भक्ति सबको देते नहीं, वो केवल उनके गिने चुने जितने लोग हैं ना, ब्रजवासी वृंदावन बरसाने में रहते हैं, वहाँ जन्म लेते हैं, गोपी बने हुए हैं, ब्रजवासी बने हुए हैं, ग्वाल बाल बने हुए हैं, केवल उनको साथ ही प्रेम करते हैं वो, बाकी सबको दंड देते हैं। महाभारत में क्या किया, बहुत लोगों को दंड दिया। हाँ, तो बाहर से आए वृंदावन में सबको काट दिया, मार दिया उन्होंने, बहुत कम लोगों को प्रेम देते हो, गिने चुने हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि सर्वधर्मम परित्याज, जब सब कुछ जितना भी तुम्हारे मन में आ सकती है जब तक नहीं छूटती है तब तक मेरा प्रेम नहीं मिल सकता है, बाकी सब दे दूंगा, आपको पैसा दे दूंगा, अच्छी बीवी दे दूंगा, अच्छे बच्चे दे दूंगा, धन दौलत दे दूंगा, सब दे दूंगा, ले लो, प्रेम मत मांगो, हाँ मुझे खरीदने का प्रयास मत करो, तो कुछ चाहिए ले लो और जाओ। कोई धनी आदमी होता है ना, वो उसके पास जाएंगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो ले ले, बोले नहीं मेरे को आपके साथ सोना है, आपके साथ भी रहना है, बोले जाओ घर पे, माफ़ी करो, सॉरी मेरे घर में सो सकते नहीं आप, मतलब वो अपना बनाना चाहते हैं तो वो अपना बनाने को आगे नहीं करेगा वो। लेकिन गौरांग महाप्रभु ऐसे नहीं है, वो कहते हैं कि पात्रे अपात्रे ना देखिला, ना देखिला स्थाने अस्थान, वो कोई पात्र है योग्य है अयोग्य है उसको देखते नहीं कि क्या योग्यता है, ब्राह्मण कुल का है क्या, पढ़ा लिखा है क्या, नहीं देखते वो, वो केवल देखते हैं कि अगर श्रद्धा से मेरे नाम को ले रहा है बस उतना ही काफी होगा, उतना ही काफी है, केवल श्रद्धा से उनका नाम लेंगे तो एक ही साथ में क्या दो काम करते हो, सब पापों से आपको मुक्ति दिला देंगे और एक ही साथ में आपको उनका प्रेम भक्ति भी दे देंगे एक ही साथ में, और देखेंगे ना जगह अच्छी है कि नहीं है, ना देखिला स्थान है अस्थान, कोई योग्य जगह है कि नहीं, वो भी देखते नहीं, जहां पर भी मेरा नाम पुकारा वहीं पर आके कृपा कर देते हैं। इसलिए उनको कहा गया है कि उनका औदार्य अवतार है, मतलब बड़े उदार है वो, बड़े उदार, कुछ सोचते नहीं कंडीशन क्या है, तुरंत कृपा कर देते हैं, ऐसे कृपालु महावदन्याय अवतार जो है उनका जन्म नवद्वीप मायापुर में हुआ है, इसलिए वो धाम भी उतना ही दयालु है, महाभारत जो पहुंचता है वो उसी दया को प्राप्त करता है, केवल वहां पहुंचने से, वहां केवल पहुंचने से ही अपने जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं, केवल पहुंचने से, फिर आगे नाम लेंगे तो तुरंत भगवान की कृपा तुरंत हो जाती है, ऐसा दयामयी कृपामयी स्थान है वो। तो वहां पर महाप्रभु चैतन्य ने बहुत लीला किया, 24 साल तक वहां पर रहे वो, जन्म होने से मतलब अवतार की लीला से 24 साल तक उन्होंने वहां पर लीला किया, उसके बाद में वो 6 साल भ्रमण में रहे, उसके बाद में 18 साल जगन्नाथपुरी में रही, उसको कहते हैं अंत लीला, उसको क्या कहते हैं आदि लीला जो मायापुर में हुई है, तो आदि लीला के अंदर उनकी बाल लीला भी है, यौवन लीला भी है, उन्होंने विवाह भी किया है, बाद में संन्यास लिया है 24 साल में। तो वो जो महाप्रभु जी है उन्होंने जितने भी अपराधी थे, महाप्रभु भी ऐसा नहीं कि लोग इतने पागल होते हैं कि वो महाप्रभु के धाम में जन्म लेते हुए और रहते हुए भी वहां पर भयंकर अपराध करते थे, अज्ञान के वशात आदमी अपराध क्यों करता है, वो जानता नहीं सत्य क्या है, केवल अपने मन के द्वेष की वजह से अपराध करते रहता है, ईर्ष्या अहंकार की वजह से अपराध करता है। तो महाप्रभु चैतन्य ने क्या किया, श्रीवास आंगन, ये बहुत सुंदर जगह है, आपको लेके जाएंगे वहां पर, और वो श्रीवास पंडित का घर है गंगा जी के किनारे, और श्रीवास पंडित कौन है, नारद मुनि के अवतार है, नारद मुनि के अवतार होने के नाते बड़े भक्त थे वो भगवान के शुरू से, और भगवान को इतने प्रिय थे कि उन्हीं के भगवान उन्हीं के घर में भगवान ने जाकर सबसे पहले कीर्तन करना आरंभ किया, जो कीर्तन को सबको बांटने के लिए वो आए थे, कीर्तन का जो विधि है कीर्तन, हमें ने सब लोगों ने प्रेम से कीर्तन किया, हाँ बड़ी खुशी की बात है कि आपने कीर्तन किया, वो कीर्तन का जो पद्धति है वो सबसे पहले गौरांग महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर में यानी श्रीवास आंगन में शुरू किया, उसको जो देने के लिए वो आए थे वो उन्होंने श्रीवास के घर में सबसे पहले दिया, वहीं से उसका आरंभ हुआ, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो कई दिन तक उन्होंने दिन में कीर्तन किया, सब लोग उनके कीर्तन में पागल होकर नाचते थे। बहुत दिन के बाद में महाप्रभु चैतन्य ने बोला, अरे हम लोग दिन में करते हैं, रात में सो जाते हैं, सोते हैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या स्वप्न देखते हैं, कला अच्छा बुरा विचार और तमोगुण में रहते हैं, क्यों ना हम आज से नींद त्याग कर रात को भी कीर्तन करेंगे। तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्या महाप्रभु जी आप दिन भर तो नचाते हो, थकाते हो, रात को भी सोने दे देंगे, ऐसा कैसा है, हम तो नहीं आएंगे बाबा, हमको बहुत नींद आती है रात को, ऐसा हम लोग बोलेंगे। लेकिन महाप्रभु चैतन्य ने ऐसे बोलते ही किसी ने भी ऐसा नहीं बोला, सब लोग बोले हरि बोल, आप लोग बोलो हरि बोल, बोलो बोलो हरि बोल हरि बोल, सब बोला यस यस यस, हम सब लोग रात को कीर्तन करेंगे। और उसी दिन से चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण रात को किसी को नींद नहीं आई, और ना रात को सोने की वजह से किसी की बीमारी हुई, दिन में भी नाचते थे रात में भी नाचते थे, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि किसी को रोग नहीं हुआ, किसी का सर नहीं दुखा, किसी का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, कोई पागल नहीं हुआ नींद नहीं होने से, दिन रात कीर्तन करते थे लोग, और दिन में सबके सामने करते थे, रात को दरवाजा बंद करके करते थे, अति उत्कट अति भावना से भरा हुआ, हृदय से प्रेम से भरा हुआ, और लोग प्रेम से पागल होते थे उसके अंदर, उनके शरीर में अलग अलग अंतर होते थे, और वो क्योंकि अति उत्कट कीर्तन हुआ करता था, अति उत्कट अनुभव के साथ में, तो भगवान ने कहा था कि रात के वाले कीर्तन में जो शुद्ध हृदय है उनको ही लेंगे अंदर, जिसके मन में अभी भी कोई इच्छा है, कोई भी वासना है, कोई दोष है उसके मन में, तो ऐसा लोगों को रात को एंट्री नहीं मिलेगा। यहां तक कि श्रीवास की माता जी को भी नहीं, एक बार श्रीवास की माता जी छुपके बैठ गई, तो उसको पकड़ के श्रीवास ने बाहर कर दिया, बोले तो सासू हुई तो क्या हुआ, शुद्ध भक्त नहीं है वो, भगवान का आदेश है, वो एक डब्बा में घुसकर बैठी थी और बंद डब्बा में सुनती थी कीर्तन, तो उसको पकड़ा, महाप्रभु बोला कि कुछ मुझे आनंद नहीं आ रहा आज, कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ नहीं होना चाहिए, सब ढूंढा कोई मिला नहीं, तो श्रीवास ने बाद में डब्बा खोला, डब्बे में सासू दिखाई पड़ी उसे, तो उसको पकड़ के बाल से उसने बाहर कर दिया उसको, ऐसा स्ट्रिक्ट था कीर्तन वो। एक ब्रह्मचारी आया, वो भी छुपके छुपके बैठा उधर, तो कुछ देर रात को कीर्तन किया महाप्रभु ने, तो उनको लगा कि काश आनंद नहीं आ रहा है, कुछ वो भाव में कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई है क्या इधर ऐसा, तो श्रीवास ने कहा हाँ एक आदमी है, उसको मैंने लाया था, कौन है वो, जो ब्रह्मचारी है, वो इतना तपस्या करता है केवल दूध पीता है, वो कुछ नहीं करता है, उसके बाद अब कुछ खाता नहीं है, केवल दूध दूध का आहार ही आहार लेता है वो। तो महाप्रभु को बहुत क्रोध आया, महाप्रभु ने श्रीवास से कहा क्या तुमको ऐसा लगता है कि केवल दूध पीने से मेरा प्रेम प्राप्त कर सकता है आदमी, सो वॉट, अगर दूध पीता है तो क्या है, तपस्या करने से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता, तपस्या तो ठीक है लेकिन तपस्या करने से पाप की मुक्ति हो सकती है, मोक्ष मिलेगा, लेकिन मेरा प्रेम चाहिए तो तपस्या काफी नहीं है उसके लिए, हृदय में प्रेम होगा तो इसमें एंट्री आ सकती है। तो ब्रह्मचारी को फिर उठाया श्रीवास ने और बाहर कर दिया, ब्रह्मचारी को बड़ा दुख हो गया, उसने कहा कि अगर ब्रह्मचारी को लगता है कि केवल दूध पीने की तपस्या करने से वो मेरी कृपा को प्रेम को प्राप्त कर सकता है तो वो मूर्ख व्यक्ति है, वो 10,000 जन्म तक उसको मेरी कृपा नहीं मिलेगी और इस कीर्तन में भाग नहीं ले पाएगा। तो ब्रह्मचारी हाथ जोड़कर बाहर चला गया, लेकिन मन में उस ब्रह्मचारी के ऐसे विचार आ रहे थे कि कम से कम मुझे रात के समय कुछ समय तो क्यों ना हो महाप्रभु का प्रेम संकीर्तन देखने को तो मिला, तो अपने आप को धन्यवाद किया उसने कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, मनी मन महाप्रभु को धन्यवाद दिया, बोला कि कोई बात नहीं 10,000 साल के बाद में जन्म के बाद में भी मैं आऊंगा ना, तो भी आज जो मुझे मिला वो मैं धन्य हो गया उससे, तो बड़े खुशी से गया वो निकल के। महाप्रभु तो भगवान है स्वयं, उसके मन में क्या चल रहा है उनको पता चला कि ये मन से अभी शुद्ध हो गया है, तो तुरंत बुलाया उसको वापस, बुला लो उसको, बुला लो वापस। तो शरीर से कितना व्रत कर रहे हो, हाँ केला खा रहे हो, एक ग्लास दूध पी रहे हो और कुछ खाते नहीं, हवा पीते हो, हवा खाली बस, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अगर भक्ति नहीं है भगवान के अंदर, मन के अंदर, तो मन पत्थर जैसा सख्त बनता है तपस्या करने से, भक्ति होगी तो मक्खन जैसा मुलायम बनता है तपस्या करने से, तपस्या केवल करेंगे भक्ति नहीं करेंगे तो मन जो है पहले नरम भी होगा ना, तो बाद में पत्थर बन जाएगा, कठोर बन जाएगा। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं सब कुछ ये। अगर एकादशी का व्रत भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, भक्ति के साथ और प्रेम के साथ कर रहे हैं, भावना के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे रात वाले कीर्तन में दरवाजा बंद हुआ करता था और भक्त लोग कूदते थे ऐसे छत तक, कभी उल्टा गिरते थे, कभी उल्टा गिरते थे, कभी जमीन पर लेट पेट होते थे, रोते थे बहुत, तूफान नदी की तरह अश्रु बहता था, कभी चिल्लाते थे, कभी रोते थे, कभी आवाज़ खुशी से हंसते थे, अनेक प्रकार की आवाज़ निकलती थी वहाँ से अंदर से, मृदंग की तो हो और करताल की तो हो ही थी, लेकिन लोगों के हंसने की, रोने की, चिल्लाने की, चीख करने की। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बहुत कीर्तन करते हैं उत्सव में तो हरि बोल करते हैं, चिल्लाते हैं, कूदते हैं, प्रेम से करते हैं। तो ऐसे अद्भुत ध्वनि वहाँ से आती थी, तो बाहर लोग आते थे देखने के लिए क्या चल रहा है अंदर। और कुछ लोग ब्राह्मण थे ऐसे बड़े पंडित, शास्त्र पढ़े हुए, वेद पढ़े हुए, वेदांती, जिनको अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था, अपने आप को बड़ा पंडित समझते थे, वो भी आते थे और दरवाजा खटखटाते थे, ले श्रीवास हमको भी अंदर ले लो, हम भी बड़े पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, बड़े शुद्ध हैं, हमारा खाना पीना रहना सब कुछ बड़ा पवित्र है, हम भगवान के नाम का जप करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, प्रवचन देते हैं, व्रत करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हमें क्यों नहीं अंदर लेते हैं? तो महाप्रभु का आदेश हुए बिना किसी को अंदर प्रवेश नहीं था, घर श्रीवास का था, लेकिन मालिक भगवान गौरांग महाप्रभु थे, वो जिसको बोलेंगे टिक मार करेंगे उसको अंदर। तो ये ब्राह्मणों को एंट्री नहीं थी उधर, तो एक बार दो बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो इनका अहंकार ठेच हो गया, उसको दुख हो गया, बहुत क्या समझता है श्रीवास अपने आप को, हमें नहीं प्रवेश देगा, हम वेदांती ब्राह्मण हैं, गोपाल चपल हमारा नाम है, हम सब कुछ पढ़े लिखे हैं, ये तो पागल की तरह नाच रहे हैं लोग सब लोग, मैं तो पंडित हूं, ऐसा गर्व करने लगा। फिर भी उसका प्रवेश नहीं हुआ, तो उसको श्रीवास के प्रति बड़ा द्वेष हुआ मन में कि ये श्रीवास अपने आप को समझता क्या है, मुझ जैसे ब्राह्मण का अपराध करता है, मुझे भी प्रवेश देता नहीं है, मैं इसको जरूर सबक सिखाऊंगा, कुछ तो करना होगा। तो श्रीवास पंडित जैसे भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव के प्रति उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार उत्पन्न हो गया, और उसने एक दिन रात को श्रीवास के घर के बाहर काली चंडी देवी की पूजा का साहित्य रख दिया, तंत्र मंत्र का साहित्य रख दिया, मतलब जादू टोना होता ना, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, वो सबका साहित्य वहाँ रख दिया, मांस रख दिया, खून से लथपथ हुआ, और वो तंत्र मंत्र की पूजा करने का होता है ना, मुंडकी कौटी वो सब होता है ना, वो सब रख दिया उधर। और अगले दिन जब सुबह सब लोग आने लगे यहाँ वहाँ देखने, श्रीवास के घर के आंगन में तो तंत्र का मंत्र का देवी पूजा का साधन रखा हुआ है, अरे श्रीवास तो बड़ा भक्त लगता है, दिखाता है कि वैष्णव है, भगवान का भक्त है, लेकिन कर क्या रहा है रात को, रात को छुप छुप के काली की पूजा करता है, मांस और बलि देता है और कौटी रखता है मुर्दे की, ये कोई वैष्णव लक्षण नहीं है, ये तो ढोंग है। ऐसा गोपाल चपल ने आके वहां पर बवाल कर दिया, पूरा हल्ला मचा दिया सबके मन में, देखो 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 श्रीवास दिन भर हरे कृष्णा बोलते हैं, लोगों को बहकाते हैं, और आपको पता नहीं है रात को चिल्लाते हैं ना लोग, रोड जोर से कूदते हैं, क्योंकि दिन को लड़कियों को बहलाते हैं और रात को अंदर लेके बंद करके उनका भोग करते हैं, शराब पीते हैं, पागल हो जाते हैं, इसलिए नाचते हैं कूदते हैं। दसों कोई नाचता है क्या? शराब पिए बिना इतना कूद सकता है कोई? देखो देखो रात को अंदर लोग क्या करते हैं और बाहर आके फिर तंत्र मंत्र का काम करते हैं। तो श्रीवास ऐसे बाहर आया, देखा अरे मेरे आंगन में ये सब सामान, तो लोग पूछने लगे अरे श्रीवास ये क्या है, बड़े आश्चर्य की बात है। तो श्रीवास भी इतने नम्र थे, बोले कि हाँ मेरा असली रूप तो यही है, मैं आपके सामने ब्राह्मण और वैष्णव बनने का ढोंग करता हूँ, लेकिन मेरा असली स्वरूप जो है, असलियत मेरी यही है। फिर भी वैसा वो कहने के बाद भी गांव वालों को उस पर विश्वास नहीं हुआ कि ये सच बोल रहा है, और गांव वाले सब मिलकर उन्होंने ये सब सामान साफ करके फिर गोमूत्र गोबर डाल के उसको लिप के शुद्ध कर दिया। लेकिन ये तो हुआ, लोगों ने विश्वास रखा नहीं, और श्रीवास की पवित्रता और भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ उसके मुँह, खुद के बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कर सकता है ये व्यक्ति, लेकिन कौन रखा पता नहीं था उसमें। वो भी था जब जनता बोल रही थी हाँ ना, तभी ये भी देख रहा था कि अच्छा हो गया, इसका बदनामी हो जाए तो अच्छा हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने ये किया तुरंत उसको कुष्ठ रोग हो गया, और ऐसा नहीं कि दो उंगली का कुष्ठ रोग हो गया, बहुत भयंकर पूरे शरीर का कुष्ठ रोग हो गया। उसका नाक झड़ गया, उसकी उंगलियां झड़ गई, हाँ उस शरीर में धब्बे गिर गए, पीप निकलने लगा शरीर में, सब उसका सेंसेशन जो था ना स्पर्श ध्यान वो सब खत्म हो गया, जख्म हो गया शरीर के अंदर, उसके अंदर पीप पड़ गया, खून निकलने लगा और पीड़ा इतनी भयंकर उसको होने लगी। उतनी भयंकर पीड़ा के साथ में जब वो नवद्वीप गांव में गुजर रहा था तो वही ब्राह्मण लोग जिनके साथ में वो दरवाजा रोज मारता था ना मुझे अंदर आने दो, ब्राह्मण लोग उसको मिले, बोले अरे ये तो गोपाल चप्पल है, इसको कुष्ठ रोग हो गया है, इसको हद पार कर दो, गांव के बाहर कर दो उसको। तो उसने कहा था मैं तो ब्राह्मण हूं, तुम्हारे साथ में मैंने कितने विधि किए हुए हैं। बोले किए होंगे तो, लेकिन आज तुम अछूत हो गए हो, तुमको कुष्ठ रोग हो गया है, चलो यहां से, गांव से बाहर कर दिया उसको। एक तो दर्द से परेशान, एक तो इतनी बीमारी से परेशान, ऊपर से अपमान, उसके गांव से हद पार करना, बहुत भयंकर पीड़ा हो गई उसको, मन की तन की भावना की सब जगह। गांव के बाहर जाकर जहां पर कोई रहता नहीं है, से निर्जन जगह पर जाकर और पड़ा और रोने लगा वो, उसको ना नींद आ रही है ना भोजन मिल रहा है, ना कष्ट में था वो। तो वहां से महाप्रभु चैतन्य आए कीर्तन करते हुए, तो दूर से ही उनके चरणों में गिर गया, महाप्रभु जी मुझे माफ कर दो, मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दो, मैं बहुत कष्ट में हूं, मुझे माफ कर दो। तो महाप्रभु जी उसके पास में आए, बड़ी लाल लाल क्रोध भरी आंखों से उन्होंने उसको उंगली दिखाई, कहा तुमने मेरे शुद्ध भक्त श्रीवास का अपराध किया है, उसको बदनाम करने का प्रयास किया है, उसके प्रति ईर्ष्या का ईर्ष्या दिखाई है तुमने, उसके प्रति उसका द्वेष किया है तुमने, तुम अनंत समय तक इसी पीड़ा में तड़पते रहोगे, ऐसा शाप दिया महाप्रभु ने। आप सोच सकते हैं जो भगवान का अवतार केवल कृपा करने के लिए सब जगह आए हुए हैं, वो व्यक्ति, वो अवतार भगवान का जो दुनिया भर में सबको कृपा करता है, वो व्यक्ति गोपाल चपल को ये शाप दे रहा है कि तुम ऐसे ही वेदना में तड़पते रहोगे, तो अभी मेरे लिए क्या आशा है। बड़ा पश्चाताप किया उसने, क्योंकि भगवान ने उसको बताया कि तुमने ये मेरे शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया है, ये मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता हूं, बाकी तुम्हारे सारे पाप मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त के खिलाफ कोई अपराध करेगा तो वो कभी नहीं बचेगा। इसलिए वो रोते हुए माफी मांगने पर भी उसको माफ तो किया ही नहीं, ऊपर से शाप दे दिया कि 10,000 जन्म तक तुम इस वेदना में पीड़ा में तड़पते रहोगे। तब उसको पश्चाताप हुआ, तब उसको समझ में आया कि मैंने भगवान को जो प्रिय है उसका अपराध किया, इसलिए मेरी आज ये स्थिति है। तो हृदय से उसको पश्चाताप, फिर वो सोचने लगा कि मैं कितना पापी हूं, मुझे श्रीवास के प्रति अपराध करने से कष्ट हो रहा है। तो उसको मन में बहुत दुख हुआ उस बात का, जो उसने किया उसका उसको पश्चाताप हो गया। फिर कई साल बीत गए, फिर महाप्रभु चैतन्य संन्यास लिए, और संन्यास लेकर फिर दोबारा आए वो, उधर एक जगह है कुलिया ग्राम, उसका और एक नाम भी है अपराध भंजन स्थली बोलते हैं उसको। जो बड़े बड़े लोग थे ब्राह्मण लोग, उन्होंने बड़े बड़े अपराध किए थे, वो उस जगह पर भगवान ने सबको एक बार माफ कर दिया, कुलिया ग्राम, उसका नाम है अपराध भंजन स्थली। अलग अलग लोग थे उस समय, बहुत लोग थे, गोपाल चप्पल थे, गोपाल चक्रवर्ती थे, और बहुत लड़े लोग थे जिन्होंने भगवान का अपराध किया था, भक्तों का अपराध किया था। दूसरी बार जब लौट के आए तब उनका मन जो है वो पूरा पश्चाताप से भरा हुआ था। जब पहली बार मिले भगवान को तो केवल उसको जो दुख हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, जो वेदना हो रही है, वो नष्ट हो जाए, यही उसकी इच्छा थी बस। लेकिन मन में उसकी अनुभूति नहीं थी ये सब क्यों हो रहा है, कि मैंने भगवान के भक्त का अपराध किया है इसलिए हो रहा है, ये उसको पता नहीं था ना, वो जानने की कोशिश कर रहा था। इसलिए भगवान ने उसको उस समय माफ नहीं किया, क्योंकि भगवान ये चाहते थे कि उसकी समझ में आए कि ये सब क्यों हो रहा है, ताकि वो दोबारा गलती ना करे, दोबारा उसके हाथ से वो अपराध होकर उसका नाश ना हो जाए। इसलिए भगवान ने जानते हुए ही बड़ी कृपा से उसको शाप दिया, और ये शाप की वजह से ही उसके मन में भावना जागृत हो गई कि हाँ भाई मैंने भगवान के भक्त का अपराध किया। इसलिए वो उस भावना में जब आया तब वो शुद्ध हो गया। तब दोबारा भगवान को मिला तो भगवान से माफी मांगी उसने, तो भगवान ने उसको गले लगाया और भगवान ने कहा कि तुम्हें माफ करने का अधिकार मुझे नहीं है, तुमको उसी श्रीवास के पास जाना होगा जिसका तुमने अपराध किया। तुम्हें माफ करने का अधिकार मुझे नहीं है, मेरा भक्ति आपको माफ करेगा। तो भगवान क्या बताते हैं, चलो मैंने आपको इंसल्ट कर दिया और मंदिर में गया, गिरधारी मंदिर में वापस सॉरी जाके बोल के आए कि मैंने इसका अपराध किया सॉरी, उससे काम नहीं बनता है। नारद मुनि सॉरी दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपराध किया था, तो भगवान का चक्र है ना, चक्र उसके पीछे लग गया। तो सब जगह घुमा वो, कैलाश में गया शिव जी के पास, शिव जी ने कहा हरे कृष्णा, विष्णु का चक्र पीछे पड़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ तुम। फिर ब्रह्मा जी के पास गया, वहां पर भी चरण पकड़ा उनके, बोले माफ करो माफ करो हमको माफ करो, बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान विष्णु का चक्र है ना, तो उनके पास ही जाओ। तो दुर्वासा मुनि गए वैकुंठ में भागते हुए, जहां से चक्र आया था वही जगह गए, वो चक्र पीछे लगाए उनके। वैकुंठ पहुंचे, अभी लगा कि जिसका चक्र है उसके ही पास आए ना, तो कम से कम चक्र का परिणाम जो है नष्ट हो जाएंगे। तो चक्र वाले स्वामी क्या बोलते हैं, विष्णु स्वामी वो कहते हैं चक्र मेरा हो तो क्या हुआ, ये चक्र को तुम्हारे पीछे से वापस लेने की शक्ति मुझ में नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। जब तक तुम उसी भक्त के पास जाकर माफी नहीं मांगोगे, तब तक ये चक्र जो है मेरी आज्ञा भी नहीं मानेगा, वो छूट चुका है, तुमको भी नहीं छोड़ेगा वो। तो ये पूरा कैलाश ब्रह्मलोक वैकुंठ जाने के बाद में पूरा घूम के पृथ्वी पर आया, जहां पर अम्बरीश महाराज खड़े थे, उनके चरणों में जब गिरा ना, तब ये चक्र जो है वापस चला गया। मतलब जिसका अपराध किया ना, उसी की माफी मांगनी है, याद रखना, वो भी पश्चाताप की भावना से, खाली सॉरी बोलने का काम नहीं है, हृदय से पश्चाताप करना चाहिए। तो वैसे ही भगवान ने गोपाल चपल को बताया कि हाँ अच्छा किया तुमने, अभी तुम्हारा भावना सही है, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, तुम्हें वही माफ कर सकता है जिसका तुमने अपराध किया है। तो फिर भगवान को छोड़कर वो श्रीवास के पास गए और श्रीवास से हाथ जोड़कर चरणों में गिर गए, बोले कि माफ कर दो मुझे, मैंने अपराध किया आपका। तो श्रीवास ने कहा कि मैंने आपका कभी अपराध स्वीकार नहीं किया, मैं तो वैसे ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर माफी चाहते हो तो माफी भी देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और श्रीवास इतने दयालु थे कि वो श्रीवास अपने घर से गोपाल चपल को हाथ पकड़कर, इसको कुष्ठ रोग हुआ है बाय द वे, कुष्ठ रोग उसको हुआ है, शरीर से बदबू आ रही है, पीप है, जख्म है, नाक झड़ गया है, उंगलियां झड़ गई है, ऐसे व्यक्ति को हरे कृष्णा, ऐसे व्यक्ति को हाथ पकड़कर वो महाप्रभु चैतन्य जहां बैठे हुए थे कथा करते करते उस जगह लेके आए। और श्रीवास ने महाप्रभु जी को कहा, महाप्रभु गौरांगा, ये गोपाल चपल जो है शुद्ध हो गया है, इसका हृदय पवित्र हो गया है, इसको अभी आप इस पीड़ा से मुक्त कर दो। तो जब श्रीवास ने माफ किया, तब भगवान ने उसको गले लगाया, और भगवान के गले लगते ही उसका कुष्ठ रोग एक क्षण में नष्ट हो गया, सारी उंगलियां वापस आ गई, नाक झड़ा हुआ वापस आ गया, जख्म सब भर गए, और शरीर उसका सुंदर हो गया जो एकदम कुरूप हुआ था रोग की वजह से। तो मतलब भगवान के अंदर माफ करने की शक्ति थी, उसको तत्क्षण जैसे कुछ रोग हुआ था वैसे तत्क्षण उसको रोग से मुक्ति करने की शक्ति भगवान के अंदर थी, लेकिन भगवान ने उसको तब तक नहीं वो माफी दी जब तक वो उसके पास नहीं गया जिसका उसने अपराध किया। जब वो किया, उसके बाद स्वयं आके बोले कि हाँ मैं माफ कर चुका हूँ उसको, आप अभी कृपा करो उसके ऊपर, तब जाकर भगवान ने उसको गले लगाया, और गले लगते ही सारा उसका कुष्ठ रोग तत्क्षण नष्ट हो गया। तो गुरु महाराज ने हमारे इस पर प्रवचन दिया इस कथा के ऊपर, उन्होंने कहा कि भगवान के भक्त का अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए। हमको लगेगा कि हम तो सीनियर डिवोटी हैं, ये तो कल आया हुआ है, इसको कौन पूछता है, हम तो 50 साल से डिवोटी है, वो तो कल से जब कर रहा है, उसका अपराध हम कर सकते, हु केयर्स, ऐसा हमको लगता है। लेकिन भगवान की दृष्टि से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, जो भी उनको नाम लेता है वो उनके लिए प्रिय होता है, चाहे 2 दिन लिया होगा या 20 साल लिया होगा या 200 साल लिया होगा, जो भी उनका नाम लेता है वो उनके लिए प्रिय होता है। और आपने उनसे अधिक नाम लिया होगा और आप समझते हैं कि मैं ज़्यादा सीनियर हूँ, और अगर उसका अपराध आप करते हैं फिर भी भगवान आपको माफ़ नहीं करते, चाहे भक्त छोटा सा हो या बड़ा हो, या बड़ा महंत हो या बड़ा कोई मठाधीश हो, भगवान किसी के तरफ से भी उनके भक्त का अपमान नहीं सहन कर सकते। और अपमान करने के बाद में अगर पता चला कि हमने उसका अपमान अपराध किया है और आपके हृदय में पश्चाताप की भावना नहीं आती है, तो भगवान माफ नहीं करते उसको। पश्चाताप के साथ जो माफी मांगता है उसी को भगवान माफ करते हैं। और वो भी जिसका किया है वो माफ करेगा, उसके बाद भगवान माफ करेंगे और कृपा करेंगे। तो जब भगवान ने उसको आलिंगन दिया तो एक ही झटके में उसका कुष्ठ रोग नष्ट हो गया और उसके हृदय में भगवान का शुद्ध प्रेम स्थापन हो गया, और शुद्ध प्रेम की वजह से उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दीक्षा हुआ, उसके बाद में उसका नाम हुआ देवकी नंदन दास, और देवकी नंदन दास के रूप में नवद्वीप का बड़ा संत बना गोपाल चपल। जब उसका परिवर्तन हुआ, माफी किया, माफी मिली, शुद्ध प्रेम प्राप्त किया, तो बड़ा शुद्ध भक्त हो गया हूँ। उस श्रीवास के गुणगान करने लगा और उसने ऐसे सैकड़ों कविता लिखी जिसमें भक्त का गौरव का वर्णन किया उसने कि भक्त लोग कितने महान होते हैं। हाँ, साधवम हृदयम मन्ये, ये कितने महान होते हैं कि हमेशा वो भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान उनके हृदय में रहते हैं। इतना प्रेम है उनका भगवान का और उनके बीच में, और भगवान कहते हैं कि मुझे उनके बिना किसी का परिचय नहीं है, और वो कहते हैं मुझे हमें भगवान के सिवा कोई जानते नहीं, हम दोनों का रिश्ता ऐसा है, भगवान के हृदय में भक्त और भक्त के हृदय में भगवान, दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं और प्रेम करते हैं दूसरे पर, और भगवान ऐसे भक्तों का अपराध कभी भी सहन नहीं करते। तो गोपाल चपल की कहानी है, दुर्वासा मुनि की कहानी है, हाँ अश्वत्थामा की कहानी है, ब्रह्मा जी की कहानी है, ब्रह्मा जी ने भी भगवान का अपराध किया, भक्तों को चुरा कर गुफा में रख दिया, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांडवों के पांचों पुत्रों को नींद में मार दिया, हाँ सबको दंड हुआ भगवान की तरफ से। लेकिन जब पश्चाताप किया और जाके उनसे माफी मांगा तो मुक्त हो गए वो लोग। कई कहानी है शास्त्र में, बहुत सारी कहानी है। तो नवद्वीप धाम में अगर आप जाएंगे ना, सोचेंगे भगवान का तो औदार्य स्थान है, ये बहुत कृपा का स्थान है, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, नहीं, वहाँ पर भी बाकी सारे अपराध माफ हो जाएंगे आपके। अगर आपने मांस खाया होगा, कभी दारू पिया होगा, कभी किसी का झूठ बोल के पैसा लूटा होगा, सब कुछ ऐसे अपराध भगवान माफ कर देंगे आपके। लेकिन भक्त का अपराध किया तो वहाँ पर भी माफ नहीं होता है, ना वृंदावन में होता है, ना बरसाने में होता है, ना नवद्वीप में होता है, जगन्नाथपुरी में, ना बॉम्बे में, ना दिल्ली में, मद्रास में, कहीं भी नहीं होता है। किधर भी आप भगवान के भक्तों का अपराध करेंगे, भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। जैसे आपके बच्चे का मैं अपराध करूंगा तो मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाएगा फिर भी आप छोड़ेंगे नहीं, बोला होगा बड़ा, आई डोंट केयर, मेरे बच्चे का अपराध किया है मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, क्योंकि आपके बच्चे पर आप प्रेम करते हो, और जिस पर आप प्रेम करते हो उसका बुरा कोई भी करेगा तो आपको सहन नहीं होगा वो। अरे हम लोग तो दुनिया के लोग हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है, उनके प्रिय बालकों का कोई अपराध कर तो बहुत पावरफुल है ना वो। हम गरीब होंगे तो आप बोलेंगे मैं बदला लूंगा उसका, लेकिन नहीं ले सकता क्योंकि मैं इतना कमज़ोर हूँ, बड़ा पावरफुल आदमी है, उसने मेरे बेटे का अपराध किया है तो इसलिए मैं क्या करूँगा उसको, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, दुर्बल आदमी हूँ, कमज़ोर आदमी हूँ, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन भगवान के प्रिय बालक का अगर अपमान करेंगे तो भगवान का कमज़ोर है क्या, दुर्बल है भगवान? बोलेंगे नहीं रे, वो तो बड़ा मेरा, वो तो दुनिया का बड़ा सेठ है, उसको मैं डरता हूँ, ऐसा भगवान नहीं बोल सकते ना। भगवान तो सबके मालिक है, वो दंड देने में समर्थ हैं, शक्ति रखते हैं दंड देने की, इसलिए कभी भी भगवान के भक्त का अपराध मत करो, जानते हुए कभी भी मत करो, और गलती से हुआ अनजाने में तुरंत माफी मांगो। तब अहंकार मत करो कि मैं कैसे जाऊंगा उसके पास, वो तुम्हारा जूनियर है, मैं उसका डिपार्टमेंट का हेड हूँ, वो मेरे डिपार्टमेंट में नौकर है, मैं कैसे माफी मांगे उसका। संकोच मत करो क्योंकि होगा वो आपके डिपार्टमेंट के अंदर एक सिंपल सा अधिकारी काम करने वाला, लेकिन अगर भगवान का भक्त है वो तो भगवान आके डंडा देंगे आपको अच्छी तरह से। इसलिए ये हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, इसमें सब जगह भक्त लोग हैं ना, इधर बॉस में भी भक्त है और हाउसकीपिंग में भी भक्त है और मेंटेनेंस में भी भक्त है, नर्सिंग में भी भक्त लोग है, हाँ सब डिपार्टमेंट में है, कोई ऊंचे अधिकार में है, कोई छोटे अधिकार में है, कोई अधिकार में है नहीं, कई अधिकार में है, लेकिन कोई किसी का भी अपराध कोई करता है ना ये समझ के कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, तो वो फंस जाएगा उसके अंदर। इसलिए गलती नहीं करना चाहिए कभी भी, तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए उसी व्यक्ति की, तुरंत सॉरी बोलकर हृदय से माफ़ी मांगना चाहिए। जब हृदय से माफ़ी मांगेंगे तभी जाकर भगवान माफ़ करेंगे। अगर पश्चाताप की भावना लेकर जाएंगे उस भक्त के पास तो ही भगवान समझेंगे कि हाँ सही है ये, तभी वो माफ़ करेंगे। और वो पश्चाताप की भावना नकली रहेगी आपकी और ऊपर ऊपर से आप सॉरी बोल रहे हो तो शायद वो माफ़ करेगा लेकिन भगवान माफ़ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो महाप्रभु जी के स्थान में हम लोग जा रहे हैं, अभी भी जिसको आना है वो आ सकते हैं। हाँ किसी को समस्या है तो बताओ उनको, हम उसको हेल्प करेंगे। लेकिन बार बार ऐसे मायापुर की यात्रा आती नहीं है। हाँ एकदम सस्ते में सब लोगों के लिए, जो सब लोग आ सकते हैं उसके अंदर। तो आप लोगों को और किसी को आना है तो जिस ट्रेन में भक्त लोगों ने टिकट बुक किया है उसमें आप वेट लिस्ट टिकट ले लो और उनके नीचे सो जाओ पेपर डाल के और मायापुर पहुंच जाओ और मायापुर के भगवान के दिव्य स्थान का दर्शन करो, जहाँ पर भगवान ने कीर्तन किया, जहाँ पर कीर्तन का आरंभ किया, जहाँ पर रात को कीर्तन किया, जहाँ पर भगवान ने अनेक लीलाएँ की। हाँ वो सुंदर सुंदर स्थान का दर्शन करेंगे, वहाँ गीत गाएंगे, कीर्तन करेंगे, जो कीर्तन भगवान ने वहाँ शुरू किया उस जगह पर जाकर कीर्तन करेंगे, वो सारी कृपा बटोर के वापस लौट के आएंगे। हाँ जीवन धन्य होगा। एक बार जो मायापुर धाम में जाता है दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेता, ऐसे उस धाम का महात्म्य है। केवल जाने से, केवल वहाँ पहुँचने से, केवल वहाँ के हवा खाने से दोबारा इस विश्व में जन्म नहीं होगा। वैसे ही बरसाने का है, अभी हम बरसाने जा रहे हैं, उसके पहले राधारानी के धाम में जाएंगे तो केवल वहाँ पहुँचने से ही दोबारा जन्म ना लेने की जो व्यवस्था है वो हो जाती है। फिर हमको ऊपर जाके जो सेवा मिलती है वहाँ पर, हम लोग वहाँ पर प्रसाद भी खाते हैं, ब्रजवासियों की सेवा भी करते हैं, वो कीर्तन भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं और फिर वहाँ पर भी जाते हैं दर्शन करने के लिए भगवान का, जहाँ जहाँ स्थान है उनका लीला सुनते हैं, प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, थोड़ा बहुत डोनेशन दे देते हैं। ये बड़ी भाग्य की बात है। हाँ शायद भारत का जो प्रधानमंत्री है वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन आप वहाँ पहुँचोगे तो भगवान की कृपा मिलेगी आपको। यही इस जगह में काम करने का बेनिफिट है। हाँ नौकरी करते करते भगवान की कृपा मिल रही है, ऐसी व्यवस्था हो रही है। हमारे मंदिर के बहुत लोग बोलते हैं कि अरे इतनी सस्ती यात्रा हम भी आ सकते हैं क्या? बोला नहीं, केवल भक्ति वेदांत के एम्प्लॉय लोगों के लिए है ये, आपके लिए नहीं है। ओनली फॉर भक्ति वेदांत एम्प्लॉयज। हाँ लाभ लो उसका आप। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चन? आऊँ क्या ये पूछ सकते हैं आप मुझे? तो उसका उत्तर हाँ है, आ सकते हैं। हरि ओम। हाँ 13 को लोग यहाँ से जाएंगे,